ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रॉपर विलंबित क्लास में। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी बारिश में भी आप मंदिर आए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये दिखलाता है कि आप सबकी कितनी रुचि है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो आप सबके एक बार आप सबों के लिए एक बार बोलेंगे हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज एकादशी है और पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। तो पुरुषोत्तम मास में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका करोड़ों गुना लाभ होता है। तो इस मास में कोई एकादशी रख लेता है तो फिर उसका पिछले कई जन्मों में एकादशी हमने छोड़ी हुई है वो सारी की सारी बराबर हो जाती है। तो आप में से कितने लोग आज एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? अच्छा, अभी 50% है। तो हमें चाहिए कि एकादशी व्रत का पालन करें। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। जो माधव तिथि है, माधव का मतलब कृष्ण और उनकी तिथि, जो कृष्ण की तिथि है। जैसे कृष्ण की बहुत सारी तिथियां हैं, जन्माष्टमी है, गौरांग महाप्रभु का जो आविर्भाव गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी, जितने भी आविर्भाव दिवस होते हैं भगवान के, और उसके साथ साथ जितनी एकादशी होती है सभी एकादशियों को क्या कहा जाता है? माधव तिथि। तो इस माधव तिथि को बहुत ही जतने पालन करें, बहुत ही यत्न के साथ हमें पालन। ऐसे नहीं कि वन ऑफ द डेज जैसे संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वैसे एकादशी भी निकाल दिया। एकादशी जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है, इसको बहुत ही यत्न के साथ हमें पालन करना, ठीक है। और क्लास में जितने लोग क्लास सुन रहे हैं उसमें एक ही काम करना है, चाहे तो जप करना या क्लास सुनना, दोनों काम एक साथ नहीं करना, ठीक है। तो जितने भक्त लोग जप कर रहे हैं, अगर वो जप करना चाह रहे हैं तो बाहर बहुत सारे रूम्स हैं उसमें जाके जब कर सकते हैं। क्लास सुनना है तो सिर्फ क्लास, दोनों के प्रति अपराध है। आप हरि नाम कर रहे हैं तो नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, और जो क्लास सुन रहे हैं क्लास भी नहीं ठीक से सुन पा रहे हैं। तो वक्ता के प्रति भी अपराध है, भागवत के प्रति भी अपराध, और साथ साथ हरि नाम, दो दो अपराध लेके कहां जाएंगे, है ना। इसीलिए अच्छा, जिनकी सेवा है, अच्छा कुछ लोगों की सेवा है तो वो जब कर सकते हैं, तो थोड़ा इधर बैठ के कर सकते हैं। सामने आप रहते हैं ना तो आप लगता है जो क्या हो रहा है, इस तरह बैठ के वो जब कर सकते हैं। तो माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। तो माधव तिथि जो है बहुत ही इसको जतन के साथ पालन करना। और इस दिन कहा जाता है कि अगर हम अन्न खाते हैं तो अन्न ही खाते, क्या खाते? पाप, है ना। तो जितने पाप हैं वो सारे के सारे इसी में आ जाते हैं, अन्न में। तो हम चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, तो सारे के सारे पाप उसी में विराजमान हो जाते हैं। तो ऑलरेडी इतने सारे पाप लेके लोग घूम रहे हैं, है ना, 84 लाख योनियों के चक्र में घूम रहे हैं, उसके साथ साथ ऊपर से और पाप डाल दिया तो क्या हो गया, वो और बढ़िया। तो इस दिन जो है किसी भी तरह का हमें अन्न नहीं खाना, फल फूल खा सकते हैं वो भी भगवान को भोग लगा के, है ना, उसका दूध पी सकते हैं। तो जितना हम रह सके फास्टिंग पे, पहले तो अगर कुछ नहीं कर, अगर बहुत अच्छा है कि आप कुछ भी नहीं करें, जल भी ना लें तो बेस्ट है। फिर भी दिक्कत आ रही है थोड़ा जल ले लो, फिर भी दिक्कत आ रही है तो सिकंजी ले लो, फिर दिक्कत आ रही है तो फल खा लो, फिर दिक्कत आ रही है तो दूध पी लो, फिर भी दिक्कत आ रही है तो कुट्टू का आटे का वो खीर बना लो, खिचड़ी बना लो, सावक के चावल का, तो ग्रेडेशन है। लेकिन अन्न फिर भी मत खाओ, क्योंकि अन्न खाओगे तो उसमें क्या होगा, पाप होगा। तो पाप से हमें मुक्ति पानी है तो एकादशी, उसके साथ साथ जो कुकिंग से हमारा टाइम बच गया है ना, जो टाइम बच गया है तो इस टाइम में क्या करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनना, मंदिर आना, यहाँ पे कीर्तन में बैठना, ये सारी गतिविधि हम कर सकते हैं, है ना। इसलिए एकादशी स्पेशल है। और एकादशी जो है कितने दिनों में आता है, हर एक 15 दिन में आता है ना। और कुछ साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च भी किया था, जापानी साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने पाया कि हर एक 15 डेज में हमें फास्टिंग करना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो हमारा जो एक्सक्रीशन सिस्टम है बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी तरह एक सिस्टम है जिसका नाम है क्या, एक्सक्रीशन सिस्टम, विसर्जन का सिस्टम। तो विसर्जन सब सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे हमारे किडनीज हो गए, मल द्वार हो गया, ये सब आते हैं। इसमें बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होती है, जितनी भी गंदगियां होती हैं, वो उसके माध्यम से निकलती है। तो जब हम 15 दिन में एक बार व्रत रखते हैं, तो उससे, मैं भौतिक दृष्टि के बाद शरीर के बात बता रहा हूं, तो उससे क्या होता है कि शरीर की जितनी गंदगी है वो इकट्ठा हो जाती है और सही तरीके से बाहर निकल जाती है ना। तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि 15 दिन में एक बार किसी तरह से हमें फास्टिंग तो करना ही चाहिए। और एकादशी जो है वो भी कितने दिन में आती है, वो भी देखो कैलकुलेट एग्जैक्ट, इसका जो है 15 दिन में ही आता है। तो हमारा जितना भी वैदिक गतिविधियां हैं वो सारे के सारे पूर्ण रूप से क्या है, वैज्ञानिक है ना। इसीलिए माधव तिथि एकादशी का खास करके पालन करना, खास करके इस पुरुषोत्तम मास में। तो आप सबको जैसे पता है कि हम जो एकादशी में प्रभुपाद जी के जीवनी पे चर्चा करते हैं और लीलामृत से पाठ करते हैं, है ना। तो आज जो है हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है अध्याय संख्या 47। इसका नाम है अमेरिका में प्रचार भाग 2। इसका मैं थोड़ा आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है कि प्रभुपाद जी अभी लॉस एंजलिस में हैं और ये महीना 1975 का चल रहा है, साल 1975 का चल रहा है। और प्रभुपाद जी की तीव्र इच्छा थी क्या कि चैतन्य चरितामृत का जो प्रकाशन है वो बहुत ही जल्दी से जल्दी शीघ्र हो जाए। तो एक बार ऐसे वो मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे और प्रभुपाद जी प्रतिदिन जो है मॉर्निंग वॉक किया करते थे, तो मॉर्निंग वॉक में वो जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे पूछा कि प्रकाशन का कैसा चल रहा है, प्रेस वगैरह किस तरह से चल रहे हैं। तो भक्तों ने बताया कि अब हमने जो है एक ऐसा सिस्टम लिया है कि जो बुक पहले 4 महीने में पब्लिश हुआ करती थी, अब जो 1 महीने में एक बुक हो जाएगी। ऐसा प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने बोला प्रभुपाद जी ने कि लेकिन मैं चाहता हूं कि चैतन्य चरितामृत का जो पब्लिकेशन है वो 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। चैतन्य चरितामृत जब देखेंगे उसमें 17 बुक्स हैं, 17 पुस्तकें हैं। तो 17 पुस्तकें अगर कैलकुलेट किया जाए, अगर 1 महीने में 1 पुस्तकें हो तो कितना हो जाएगा, 1 साल और 5 महीने, तो मैक्सिमम था। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, मुझे जो है 2 महीने में ही चाहिए। एकदम वो चलते थे ऐसे बहुत ब्रिस्कली और केन लेके चलते थे, उन्होंने अपना जो केन था वो जमीन में सैंड के अंदर गाड़ दिया, बोला कि मुझे 2 महीने में ही चाहिए कुछ भी हो जाए। वहां पर रामेश्वर थे, राधा वल्लभ प्रभु थे, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ये तो इम्पॉसिबल है, यह असंभव है। तो प्रभुपाद जी ने उनके आंखों को घूर के देखा, बोला क्या, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज फाउंड इन द फूल्स डिक्शनरी। जो इम्पॉसिबल शब्द है वो किसके शब्द कोश में पाया जाता है, जो फूल है, जो मूर्ख है। तो इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत सारे भक्त लोग थे वहां पे, तो वो उनको देख रहे हैं। प्रभुपाद जी फिर आगे निकल गए, वो दोनों पीछे रह गए, बाकी भक्त गए और प्रभुपाद जी आगे निकल गए, वो दोनों पीछे रह गए। फिर वो आगे गए, फिर डिस्कशन करते प्रभुपाद जी हमें जो फिर जो है कुछ मीटिंग रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें, बोले तुम्हारी इच्छा तुम्हें जो करना करो, है ना, कोई आप में उसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2 महीने में पूरा का पूरा चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन चाहिए, पूरा का पूरा बुक चाहिए। अब ये ऑर्डर पास हो गया, अब से पीछे नहीं मुड़ सकते, अब ये ऑर्डर पास हो चुका है, अब कैसे करना है इस पे चर्चा होगी, वो होगा इस तरह से, है ना। तो अभी जो हम चर्चा पढ़ेंगे वो इसी के ऊपर है। 3 सप्ताह से अधिक हो गया था जब प्रभुपाद ने बीबीटी को 2 महीने में 17 पुस्तकें छापने का आदेश दिया था। अब रामेश्वर और राधा वल्लभ ने रिपोर्ट दी कि सभी विभागों में 2400 घंटे काम हो रहा था, 24 आवर्स जो है सेवा शुरू कर दी, नॉन स्टॉप कार्य चल रहा था, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए भक्त दृढ़ संकल्प हो गए। सबका एक ही मत था कि प्रभुपाद जी की ये तीव्र इच्छा है, तो हमें कुछ भी हो जाए प्रभुपाद जी की इस इच्छा को हमें पूर्ति करनी, एकदम से दृढ़ संकल्प हो गए सारे के सारे। अधिकांश प्रेस कर्मचारी 4:30 बजे सवेरे मंगला आरती में उपस्थित होते थे, 24 घंटे काम सेवा कर रहे हैं लेकिन फिर भी मंगला आरती में उपस्थित। मंगला आरती कितने बजे होती है? 4:30 शार्प, 4:30 बजे उपस्थित। निर्धारित संख्या में माला जपते थे। क्या है निर्धारित संख्या? प्रभुपाद जी ने क्या स्टैंडर्ड दिया, कितनी माला का जप करना? 16 माला का जप करना कम से कम, और एकादशी के दिन कितनी माला का जप करना? 25 माला का जप करना। तो वो माला का भी जप कर रहे हैं, मंगला आरती भी अटेंड कर रहे हैं, साथ में ये जो छपाई वाली सेवा है वो भी पूरा कर रहे हैं, और देर रात तक काम में लगे रहते थे। कभी कभी वे केवल एक बार खाना खाते थे, तो भोजन करने का भी टाइम नहीं, इतना पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो चुके हैं कि क्या करना, बस गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्त ते करी आक्या। तो गुरु के मुख से ये शब्द निकल गया कि 17 पुस्तकें मुझे 2 महीने में प्रकाशित करना है, बस उस पर चित्त से एकाग्र कर लिया। अब कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस उसी में लगे हुए हैं। इस तरह से इस्कॉन के अन्य विभागों से अतिरिक्त संपादक, चित्रकार, फोटोग्राफर, अनुक्रमणिका बनाने वाले, टाइप करने वाले, प्रूफ पढ़ने वाले और लेआउट करने वाले को लोग बुला लिया गया था, लोग एडिशनल लोग आए थे। इसमें श्री प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी सहयोग दे रहा था। अब टीम वर्क आ गया इसमें, अब जो भी भेदभाव थे सारे के सारे समाप्त हो गए, क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य था। अगर कोई टीम वर्क करना चाहता है तो टीम वर्क तभी सफल हो सकता है जब गुरु के निर्देशों को बीच में रखा जाए। अगर गुरु के निर्देशों को बीच में नहीं रखा जाएगा तो कभी भी टीम वर्क जो है सफल नहीं होगा। अब गुरु का निर्देश था कि ये हमें करना है, तो सारे के सारे जितने लोग थे सहयोग दे रहे थे एक दूसरे की सेवा में। श्रील प्रभुपाद, ऐसा लगता था मानो इस एक कार्य के अतिरिक्त उनके लिए किसी अन्य चीज का अस्तित्व नहीं रह गया था, और कोई अस्तित्व ही नहीं रहता था, बस 2 महीने में इसको कंप्लीट करना। देश के सबसे बड़े मुद्रक किंग्सफोर्ड प्रेस ने छपाई का काम अपने हाथ ले लिया था। कौन से देश में, कौन से देश की बात हो रही है? यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात है। और उस देश के जो सबसे बड़े प्रेस था, जो सबसे ज्यादा मुद्रण, सबसे बड़ा जो मुद्रण करने वाली जो कंपनी थी, उसका नाम था किंग्सफोर्ड कंपनी को यह सेवा दी गई। वह इस बात के लिए सहमत हो गया था कि वह अन्य सभी कार्यों को रोक दे, वो भी एग्री कर गया कि उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस समय के लिए 2 महीने के लिए वो रोक देगा और इसी कार्य में वो लगेगा, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को छापने के लिए, ताकि उसके सभी प्रेस और जिल्दसाजी विभाग 2400 घंटे इस काम में लगे रहे। क्योंकि बुक को पब्लिश करना, उसमें जिल्द लगाना, तो सारे के सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने विभाग हैं, वो इसी कार्य में लगे हुए थे। और क्या चाहिए उसके लिए, पब्लिशिंग करने के लिए कागज चाहिए, तो न्यूयॉर्क की कागज कंपनी किफायती शर्तों पर सारा कागज देने को राजी हो गई थी। एक अच्छे रेट में उन्होंने डील कर लिया था किफायती, कि चलो रिलीजियस वर्क है, तो उन्होंने ऐसा किया और कागज इत्यादि उनको सप्लाई किया ताकि निर्धारित समय में काम पूरा हो सके। डीवीटी का सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर भारत पहुंचकर चैतन्य लीला के स्थानों का विशेषकर बंगाल और उड़ीसा में फोटो खींचने में व्यस्त हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ज्यादा समय जो है उन्होंने ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बताया, खास करके बंगाल में और उड़ीसा में। तो चैतन्य चरितामृत जो है पुस्तक है जो ग्रंथ है वो केवल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में ही बतलाया गया। तो महाप्रभु का जन्म स्थान जैसे नवदीप है, मायापुर है, योगपीठ है, उसका शांतिपुर है ना, फिर श्रीवास आंगन है, इत्यादि जितने जगह हैं, तो वहां के वहां विदेश से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से प्रभुपाद जी के शिष्य आ रहे हैं यहाँ के फोटो खींच खींच के वो बुक्स को पब्लिश करने के लिए। फिर उसके बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में गए तो वहां पर रहे, तो वहां के अलग अलग स्थानों का जो है उन्होंने फोटो खींच करके बुक्स को वहां से फोटो खींचना, फिर उनको सप्लाई करना, फिर वो सारे फोटो जो बुक्स में लगेंगी, तो ये सारा का सारा कितना अच्छा टीम वर्क जो है उनका चल रहा है। श्रील प्रभुपाद कलाकारों और बंगाली संपादकों को खुले तौर पर समय देकर उनके प्रश्नों को उत्तर दे रहे थे। साथ में ऐसा नहीं कि प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन दे दिया और चले गए, इंडिया चले गए और कहीं और भ्रमण के लिए चले गए। अपने शिष्यों को उन्होंने ये टास्क दिया, ये प्रोजेक्ट दिया और खुद भी उस बीच में है। जैसे कोई सेनापति होता है अपने टीम को लीड करता है, ऐसा नहीं कि उसने कमांड दे दिया, हाँ जी इधर फायरिंग करनी है, उस पर करना, ये करना, कमांड देके खुद आ गया दिल्ली में आराम से सो रहा है। तो क्या ये जो उनकी जो ट्रिप है, उनके जो सेना है, क्या वो कभी जीतेगा? नहीं जीतेगा। जो लीडर है उसको कहां से लीड करना है? उसको फ्रंट से लीड करना, यानी सेनापति है उसको फ्रंट से लीड करना। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जो है इंस्ट्रक्शन तो दे दिया लेकिन अपने भक्तों का उत्साह बनाए रखने के लिए साथ साथ, क्योंकि कोई भी उनमें से बंगाली नहीं था और कोई भी उनमें से इंडियन नहीं था, एक ही प्रभुपाद ही थे, बंगाली थे, इंडियन थे और सारी लीलाओं को वो समझते थे। वो सारे के सारे विदेशी, वो सारे के सारे यूएस में रहने वाले, उनको कुछ भी आइडिया ही नहीं था। तो जो भी उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती, जो भी उनको नॉलेज होता, वो किससे प्राप्त होता? प्रभुपाद जी से होता। और प्रभुपाद जी ने जो है अपने शिष्यों को यह कार्य दिया हुआ है, शिष्य राधा राधिका रमण भगवान की, शिष्य कृष्ण बलराम की, शिष्य जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की। तो प्रभुपाद जी ने यह कार्य अपने शिष्यों को दिया हुआ है और उनमें से अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, मान लीजिए कि उसने अपने हिसाब से उन्होंने बना दिया कुछ भी, कि कोई भी पेंटिंग इस तरह से अपने हिसाब से बना दिया, तो फिर उसका क्या नुकसान है? क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये हम मेरे जो पुस्तकें हैं वो लॉ बुक्स की तरह हैं और आगे आने वाले 10,000 वर्षों तक ये चलेंगी, तो थोड़ी सी भी उसमें गलती हो गई तो फिर कई जनरेशन के जनरेशन जो है इस तरह से। तो इसलिए प्रभुपाद जी वहां उपस्थित थे पर्सनली और उन्होंने खुला छोड़ा हुआ था कि किसी को कोई भी अगर दिक्कत हो, पेंटिंग में दिक्कत आ रही है, कुछ प्रूफ रीडिंग में दिक्कत आ रही है, किसी कॉन्सेप्ट किसी चीज में आपको दिक्कत हो रही है, तो प्रभुपाद जी वहां प्रेजेंट थे, खुद को अपने उन्होंने अवेलेबल रखा हुआ था, सब आते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे और सारी चीजें जो भी कमियां होती थी प्रभुपाद जी एकदम से निकाल देते थे उसमें, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कलाकारों और बंगाली संपादकों को खुले तौर पर समय देकर उनके प्रश्नों को उत्तर दे रहे थे। उनके शिष्य दिन में कई बार संस्कृत और बंगाली शब्दों के सही प्रयोग के विषय में पूछने उनके पास आते थे। तो कई बार जो है वो आते थे कि संस्कृत का क्या अर्थ है, इस बंगाली वर्ड का क्या अर्थ है, प्रभुपाद जी ने अपने आप को अवेलेबल रखा हुआ था। यह केवल भाषा की विविधता की बात नहीं थी किंतु क्योंकि प्रत्येक शब्द का अनुवाद पूर्व आचार्यों की व्याख्या और स्वयं प्रभुपाद के कृष्ण भावनामृत की अनुभूति के अनुरूप होना था। प्रभुपाद ने शिष्य संपादकों को आगाह कर दिया था कि वे मनमाना परिवर्तन ना करें वरन पूछ ले, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो अपने हिसाब से दिमाग को नहीं चलाना कि हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, अपने हिसाब से दिमाग को नहीं चलाना। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझसे आके पूछ लो, मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं इधर ही बैठा हूं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया था। और जो भी प्रभुपाद उनको बता रहे थे वो भी अपने हिसाब से, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व आचार्यों के व्याख्या और क्योंकि हर एक शब्द और उनका अनुवाद जितने भी आचार्य हैं उनके व्याख्या के अनुसार वो बतला रहे थे और उनकी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति भक्ति में उसके अनुसार, तो कुछ भी कपोल कल्पना नहीं थी। क्योंकि प्रभुपाद जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन से परंपरा को, कौन से परंपरा में हम है, गौड़ीय परंपरा है ना, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, जो कि कहां से शुरू हो रही है, किन्होंने शुरू किया है, जिसके जो पहले शिक्षक है इस परंपरा के, जो पहले शिक्षक है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण पहले गुरु हुए, फिर उन्होंने शिक्षा किसको दिया, ब्रह्मा जी को, फिर नारद जी को, व्यास पहले व्यासदेव नहीं पहले नारद है, व्यासदेव नहीं पहले नारद है, फिर व्यासदेव है, ऐसे ऐसे करके मध्वाचार्य इत्यादि, फिर गौरांग महाप्रभु, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज, फिर प्रभुपाद, अब उनके शिष्य, तो ये जो है डिसाइपलिक सक्सेशन है। तो जो भी ज्ञान दिया जा रहा है ऐसा नहीं कि कपोल कल्पना से कोई सोच करके ऐसा कुछ बोल रहा है, नहीं, वो जो ज्ञान वो जो उनको उनको गुरु से प्राप्त हुआ एज इट इज जो है उन्होंने आगे ट्रांसफर किया, फिर एज इट इज आगे वो ट्रांसफर हो रहा है। तो कोई भी चीज ऐसी मानसिक धरातल पे नहीं, इसलिए पापा जी ने बोला कि कम आपको जो किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है आप मुझसे पूछ लो, मैं इधर ही हूं। कलाकारों के प्रश्न आमतौर से यह होते थे कि शिल प्रपात के दीर्घ दृष्टि के अनुसार चित्र में चीजें किस प्रकार दिखाई जानी चाहिए, चित्रों को सब तरह से ठीक बनाने की अपनी इच्छा के कारण उन्हें प्रपात से असंख्य प्रश्न पूछने का लोभ होता था। अब एक बहाना मिल गया था किनको, उनके शिष्यों को, है कि नहीं। ऐसे तो प्रपात जी हमेशा ट्रैवलिंग में रहते हैं, एक मंदिर में ज्यादा टिक के नहीं रहते, कभी दो दिन कहीं तीन दिन कहीं ऐसे ऐसे वो ट्रैवलिंग में, अभी जो है वो लॉस एंजलिस में ही है पूरे समय के लिए, पूरा का पूरा उन्होंने समय दिया हो, तो एक तो वो सेवा कर ही रहे हैं साथ साथ जो उनके शिष्य हैं उनको लोभ भी हो रहा है क्या कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और प्रभुपाद जी का जो पर्सनल एसोसिएशन है उस एसोसिएशन का हमें लाभ मिला, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली वो प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछने के बहाने जाया करते थे, और कितने प्रश्न पूछते थे, असंख्य प्रश्न पूछने का उनको लोभ होता था। प्रभुपाद ने कहा था कि उनके शिष्यों के दिव्य चित्र आध्यात्मिक जगत के झरोके थे, कलाकार नहीं चाहते थे कि उनका कल्पना से दृश्य अस्पष्ट हो जाए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये जो चित्र हैं जो आप बुक्स में देखते हैं, कृष्णा बुक में देखेंगे, भगवद गीता में जो भी आप पेंटिंग्स देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके विंडोज के समान है, खिड़कियों के समान है, जैसे खिड़की खोल के हम बाहर देख सकते हैं कि क्या है, उसी तरह फोटोज को देख करके, झरोकों को देख करके, सॉरी पेंटिंग्स को देख करके हमें आभास होता है कि आध्यात्मिक जगत कैसा होगा। अन्य किसी भी संस्था के आप फोटोज को देखिए उतना उसमें जान नहीं आता, लेकिन जब इस्कॉन के फोटोज खास करके हम देखते हैं तो उसमें अलग ही शक्ति होती है, अलग ही वो इतनी सुंदरता होती है, न केवल सुंदरता उसमें जो मैसेज होता है वो एज इट इज उसमें उसी हिसाब से वो बनाया जाता है। जैसे आपके पीछे आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे कृष्ण बलराम जी हैं वो जा रहे हैं वन की तरफ है ना, तो श्रीमद् भागवतम में जैसा वर्णन है कि कैसे वो खड़े होते थे, कैसे मुरली पकड़ते थे, गोपियां कैसे आती थी, जैसे उसका एज इट इज डिस्क्रिप्शन है उसी हिसाब से वो पेंटिंग सुना, अपने मन से कुछ भी नहीं है ना। पीछे देखेंगे शक्तासुर का है जैसे वध हो रहा है ना, तो हर एक पेंटिंग जो है वो भागवत के अनुसार ही बनाया जाता था। फिर प्रभुपाद जी से क्रॉस चेक किया गया कि सही है कि नहीं, तो प्रभुपाद जी उसमें गलतियां निकालते थे, फिर उसको सही तरीके से बनवाया जाता था है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिनका नाम है जदुरानी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक पेंटिंग बनाई है ना, जब भगवान ने जो गोवर्धन लीला किया था तो उन्होंने ऐसा पेंटिंग बनाया जैसे कि जैसे बहुत मस्कुलर बॉडी होता है ना, बहुत बड़े बड़े बाइसेप्स और एकदम से ऐसा करके वैसा करके गोवर्धन लीला उठाए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान को जो गोवर्धन उठाने के लिए बाइसेप्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो ऐसे ही अपने जो है बाल रूप में ही है, तुम ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं कि उन्होंने बाइसेप डेवलप किए उसके बाद जाकर उनको गोवर्धन हिल उठाना पड़ा ना, उठाने से पहले कई बार कसरत किया, उठक बैठक लगाया उसके बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था एकदम जैसे ना मशरूम होता है, मशरूम क्या बोलते हैं इसका, गोबर छत्ता होता है, तो उसको जैसे कोई आसानी से उठा सकता है, उसी तरह भगवान ने गोबर छत्ते की तरह जब अपने बाएं हाथ में से उठा लिया। तो अपने पेंटिंग को चेंज करो, जादू रानी को बोला तो उन्होंने अपने पेंटिंग को फिर चेंज, बाल रूप बनाया उनका। तो इसी तरह से जो भी पेंटिंग्स हैं वो पूर्ण रूप से शास्त्र के अनुसार, फिर प्रभुपाद जी उसमें अपनी पहली नजर डालते थे फिर उसको सही तरीके से, क्योंकि पेंटिंग्स के साथ साथ भक्ति का भाव भी उसमें आना जरूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग जो बनाते हैं अगर उसको हम दर्शन करते हैं तो उतना आपको भाव की अनुभूति नहीं होती, लेकिन जब भक्त लोग बनाते हैं अपने उसमें भक्ति भावना के साथ तब उसका कोई दर्शन करता है तो उसमें पूर्ण रूप से शुद्धिकरण होता है। एक दिन रामेश्वर श्रील प्रभुपाद के कमरे में एक कलाकार के चित्र लेकर आया, जिसकी दक्षता पर अधिक अनुभवी कलाकारों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो इतना एक्सपर्ट नहीं था किस चीज में, पेंटिंग में इतना दक्ष नहीं था, जितना अनुभवी कुछ सीनियर एक्सपीरियंस कलाकार थे उनके कुछ प्रश्न चिन्ह थे उनपे। संबंधित कलाकार गौरी देवी दासी थी, इनका नाम था गौरी देवी दासी, प्रभुपाद जी की शिष्या, जिसमें कलात्मक प्रतिभा थी और जो पुस्तक वितरण का काम करती थी, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करती थी, पेंटिंग भी करती थी, किंतु जिसे पुस्तक छपाई की आपात सेवा में लगाया गया था, ये आपात सेवा थी, जैसे वॉर होता है तो जितने भी मिलिट्री में सबको बुला लिया जाता है, चलो चलो अभी कोई छुट्टी नहीं, जितने घर से उठा उठा के ले जाते हैं, जो क्लर्क भी है कुछ कोई भी काम उसको, कोई भी सेवा अगर मिलिट्री में है तो सबको उठा के ले जाया था। उसी तरह ये आपात सेवा थी कि दो महीने में कितने पुस्तकों को पब्लिश करना, 17 वॉल्यूम्स, और कौन सा बुक था वो, चैतन्य चरिता में, तो इसको पब्लिश करना। तो जितने भी थे वहां पे, जितने भी शिष्य थे जो भी सेवा कर रहे थे, सारी सेवा छोड़ करके एक ही सेवा कि इस चीज में हमें लगना। तो उसमें से एक थी कौन, क्या नाम है इनका, गोविंद दासी, ध्यान से सुनिए। तो गोविंद दासी जिसे कलात्मक प्रतिभा थी और जो पुस्तक वितरण का काम करती थी, किंतु जिसे पुस्तक छपाई की आपात सेवा में लगाया गया था, उसके द्वारा बनाया गया गुंडीचा मंदिर का चित्र रामेश्वर ने श्रील प्रभुपाद को दिखाया। गुंडीचा मंदिर कहाँ पे है, जगन्नाथपुरी में। तो उन्होंने एक गुंडीचा मंदिर का जो एक बहुत सुंदर सा फोटो बनाया, और रामेश्वर जो कि पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को, जो मेन कोऑर्डिनेटर थे वो रामेश्वर और राधा वल्लभ, ये दो लोग थे। तो उन्होंने इस पेंटिंग को ले जाकर प्रभुपाद जी को दिखलाया। प्रभुपाद का निर्णय, अब देखिए उन्होंने, अब ज्यादा एक्सपर्ट वो नहीं है, उतना एक्सपर्टीज नहीं है उसको पेंटिंग बनाने में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती है, लेकिन प्रभुपाद जी के अच्छे शिष्य है, अच्छे भक्त हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, आहा यह बहुत अच्छा है। एक वरिष्ठ कलाकार भी वहां उपस्थित था और उसने कई तकनीकी भूलों को और इंगित किया था। एक और सीनियर पेंटर था वहां पे, उन्होंने प्रभुपाद यहाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, ये भी फॉल्ट है वो भी फॉल्ट है, थोड़ा देख लीजिए इसको। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, एक अंधा चाचा कोई चाचा ना होने से अच्छा है ना। चलो कुछ तो बनाया इसमें ना, अगर किसी के पास चाचा नहीं है तो काना चाचा ही, अंधा चाचा ही अच्छा है, कोई दिक्कत है। उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त पेंटिंग में ऐसी भक्ति भावना का चित्रण है जिसे पुस्तक के पाठक सराहेंगे। तो चलो टेक्निकल कुछ एफर्ट्स बता रहे हो, लेकिन इसमें जो भाव है, कौन सा भाव है, भक्ति का भाव है। तो भक्ति का भाव इसमें छुपा हुआ है, ये चीज प्रभुपाद जी देख सकते हैं, इसमें भक्ति का जो भाव छुपा हुआ है, और जो इस चित्र को देखेगा निश्चित रूप से उसको सराहेगा, इसलिए उन्होंने उसको पास कर दिया इस पेंटिंग को। लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति के कारण पुस्तक की छपाई के काम में के भाग दौड़ में बड़ी तेजी आ गई, बहुत तेजी आ गई थी, सब ऊपर नीचे इधर उधर भाग रहे थे, एक ही काम पुस्तक छपाई। प्रभुपाद के प्रातःकालीन भ्रमण में और उनकी कक्षा में शामिल हुए बिना ही या शाम को बगीचे में बैठकर पठन कार्य किए बिना ही प्रेस कर्मचारियों को दिव्य भावानुभूति होती थी। अब उनके जो रेगुलर शेड्यूल थे वो ठीक से फॉलो नहीं हो रहे थे, जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक्स पर जाते थे प्रभुपाद जी के साथ, और उसके बाद शाम को बगीचा में बैठ के बुक रीडिंग किया करते थे, और ये सारी चीज अब उनका रुक गया था, अभी एक ही काम रह गया था। लेकिन फिर भी इनके बीच भी वो कैसी आनंद की अनुभूति कर रहे थे, दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जिस चीज को सबसे अधिक चाहते थे, कौन सी चीज प्रभुपाद जी की सबसे प्रिय चीज क्या थी? पुस्तकों का मुद्रण करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये उनके हृदय की इच्छा, क्योंकि उनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने भी उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जब भी आपको धन मिले तो क्या कीजिए, आप पुस्तकों को छापिए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो ये जो था प्रभुपाद जी का हृदय है। अब हृदय की चीज को उनके जो शिष्यगण है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनको दिव्य अनुभूति हो रही है। कर्मचारी उस पर दिन रात लगे हुए थे और मन में तर्क करते थे कि प्रभुपाद से मिलने का समय निकालना स्वार्थपरता होगा, अपनी सारी शक्ति कृष्ण की सेवा में लगा देना ही उनके लिए अतीव आनंददायी थी। कि प्रभुपाद से अलग से जाके टाइम निकालना ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं सोचे, प्रभुपाद वहीं पे हैं फिर भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं, तो ऐसा कभी नहीं सोचना। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज भी कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, एक्ट इन अ सच ए वे दैट कृष्णा वॉन्ट्स टू सी यू। भगवान को ज्यादा देखने की चिंता मत करो, है ना, किधर है भगवान, किधर है भगवान, दिखा दो सामने, बोले भगवान को देखने की चिंता मत करो, इतनी अच्छी सेवा करो कि भगवान खुद चाहे कौन है तुम्हारा इतना अच्छा सेवक, इतनी अच्छी सेवा कौन करे, तो भगवान खुद प्रेजेंट हो जाए अपनी सेवा से आकर्षित होकर के, ज्यादा देखने की लालसा नहीं। तो यहां भी प्रभुपाद प्रेजेंट है तो अलग से कुछ प्रभुपाद से संग लेने की किसी की, वो जो कह रहे हैं कि ये जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, स्वार्थपरता होगा। लेकिन प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, यही सबसे बड़ी सेवा है और इसी से प्रभुपाद जी की प्रसन्नता है। प्रेस दिन रात व्यस्त था, भक्तों को सवेरे 2 या 3 बजे अपने मेजों, टाइपराइटरों या चित्र फलकों पर मुंह के बल झुके हुए पाना आम दृश्य था। सोने का टाइम नहीं है तो कहां सोते थे, अपना जो टाइप राइटिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे नींद आ गई, बस वहीं पर सो गए। पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग करते 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 नींद आ गई, वहीं सो गए, है ना। मेज पे, टेबल पे, टाइपराइटरों पे, चित्र फलकों पर मुंह के बल झुके, कोई आम बात है कि सोना है तो ऐसे ही सोना, ऐसे नहीं कि अलग से जाके तो सो रहे, है ना। प्रूफ रीडरों के हाथों में पांडुलिपियां इतनी तेजी से आती जाती थी कि उन्हें पता भी नहीं चलता था, पांडुलिपि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, जो प्रूफ रीडिंग होती है कि इसमें क्या गलती है, ऐसे प्रूफ इसको रीड आउट करना, फटाफट एक तरह से पांडुलिपि आ रही है, वो प्रूफ रीडिंग कर रहे, उधर जा रहा, फिर आ रहा, फिर जा रहा, फिर आ रहा, फिर जा रहा, नॉन स्टॉप, उनको पता ही नहीं चल रहा था। कोई कलाकार अपने अधूरे चित्र के सामने पढ़कर सो जाता था, सो गया बनाते बनाते सो गया, और जाकर देखता था वह चित्र किसी दूसरे कलाकार के चित्र फलक पर पूरा किया जा रहा है। सो गया तो दूसरा पेंटर जो कलाकार है वो वहां से उठा करके अपने पास ले गए, उसको कंप्लीट कर रहे, बोलो ये क्या, अभी तो मैं बना रहा था। तो इतना कोई सोच भी नहीं सकते थे किसी तरह का डिले हो कि ये जब उठेगा तब ये उसको कंप्लीट करेगा, तब जाके ये बुक के पब्लिशन में जाएगी, पब्लिकेशन में जाएगा, ऐसा नहीं, वेट कर ही नहीं सकते। आप सो गए, कोई बात नहीं, निकाल लो यहां से, दूसरे पेंटर्स रेडी हैं, वो बना देंगे इसको, है ना। रामेश्वर जिसे सोने का बहुत कम समय मिल रहा था, रामेश्वर कौन है, क्या इनकी सेवा अभी, प्रिंटिंग का पूरा वो अभी कोऑर्डिनेशन वो कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, मेन व्यक्ति रामेश्वर, राधा वल्लभ, दो लोग, जिसे सोने का बहुत कम समय मिल पा रहा था, सभी लोगों में समन्वय स्थापित करने में लगा था, कोऑर्डिनेशन करने में, कभी इधर से पेंटिंग्स को इधर लेके जाना, मैन्युस्क्रिप्ट्स को लाना, प्रूफ रीडर्स के पास रखना, बंगाल से, उड़ीसा से फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सारी चीजों का जो संचालन है, कोऑर्डिनेशन है, वो यही कर रहे थे, इनकी सेवा यही थी। जिनमें भारत स्थित फोटोग्राफर, मुद्रक, कागज कंपनी सभी शामिल थे, कागज वालों से डील करना इस तरह से, कभी कभी उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर वो सीधे राधा वल्लभ के साथ काम करते थे, राधा वल्लभ भी उनके साथ था। राधा वल्लभ ने प्रतिदिन का लक्ष्य तय कर लिया था, राधा वल्लभ ने एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि आज जो है कम से कम मुझे इतना करना ही है, है ना। तो पूरे का पूरे जो उनका टारगेट था उनको उन्होंने डिवाइड कर लिया था डे वाइज, और किसी भी कीमत पर वह उसे पूरा कराता था, कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो मैंने आज डेडलाइन दिया है, जो मैंने असाइनमेंट लिया है, उसको करना ही करना, पूरा करना ही है। प्रेस कर्मचारियों के लिए मानव वह सर्वत्र उपस्थित था। जो प्रेस कर्मचारी थे, जितने लगे हुए थे, सभी जगह वो राधा वल्लभ जी को देखते थे, है ना, क्योंकि हर एक जगह वो जाके ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। वह उन्हें प्रोत्साहित करता था, उनको एनकरेज करना, उनके लिए वस्तुओं को आपूर्ति करना, किसी को कुछ चाहिए, है ना, जो बना रहे थे, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो जो भी कुछ कम पड़ता था तो उनसे बोलते थे, राधा वल्लभ उनको असाइन देते थे, उनकी आवश्यकता पूरी करता, उनसे प्रार्थना करता और अपना निर्धारित कोटा पूरा करने के लिए उन पर जोर डालता, है ना, उनसे प्रार्थना भी करता था, है ना, कि ठीक है कोई बात नहीं, करते रहो, प्रोत्साहित करना, क्योंकि आसान नहीं है, सबके लिए वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है, सब थके हुए हैं, लेकिन फिर भी उत्साह बना के रखना इतना आसान कार्य नहीं है, तो ये इनकी सेवा है। किंतु एक रात अपने कार्यक्रम से हटकर वो प्रपात के कमरे में घुसा, जहां वे भक्तों के दल के साथ अनौपचारिक बैठक कर रहे थे, है ना, और भी कुछ भक्त थे जिनके साथ बैठ करके इनफॉर्मल टॉक्स कुछ कर रहे थे प्रभुपाद जी। आंखें बंद किए हुए और धीरे धीरे सिर हिलाते हुए प्रभुपाद अपने ही गाए हुए भजनों का टेप सुन रहे थे। प्रभुपाद जी जो भजन, बहुत सारे भजन उन्होंने गाए हैं, तो ऐसे आंख बंद करके और अपने टेप को ही वो सुन रहे थे। आंखें खोलकर उन्होंने राधा वल्लभ को और को औरों के मध्य बैठे देखा। जब आंखें उनकी खुली तो उन्होंने पाया कि इनको राधा वल्लभ की, बाकी लोग थे लेकिन वहां राधा वल्लभ भी थे, और कहा, मैं तुम्हें रोके रखा हूं। उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली। उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने आपको रोक के रखा हुआ है। एक भक्त बोल उठा और कहा, नहीं प्रभुपाद, आप हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। किंतु एक दूसरा भक्त राधा वल्लभ की ओर मुड़ा और बोला, मैं समझता हूं कि प्रभुपाद तुमसे बात कर रहे हैं। प्रभुपाद बाकियों के लिए नहीं कुछ देख उन्होंने बोला, ये जो स्टेटमेंट था वो किसके लिए था, और राधा, क्योंकि राधा वल्लभ जो है वहां से प्रोजेक्ट को छोड़ करके बीच में इधर बैठे हुए थे, तो एक तरह से उनका वो, उन्होंने बोला कि क्या मैं तुम्हें रोक के रखा हूं जिधर आके बैठ गए, मतलब आप जा सकते हो, मैंने तुम्हें रोक के नहीं रखा होगा, अपना काम करो जाके। राधा वल्लभ ने अनुभव किया कि प्रभुपाद का आशय क्या था। वे उसे वापस जाकर काम करने के लिए कह रहे थे, है ना, कि जाओ अपना काम करो, यहां बैठने की जरूरत नहीं है। मानो प्रभुपाद उससे सचमुच यह कह रहे हो, तुम यहां मुझे देखते हुए क्यों बैठे हो, है ना, क्यों देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं भजन सुन रहा हूं कि क्या करूं, क्या मतलब है, तुमको जो टास्क दिया हुआ वो जाके करो, वापस जाकर अपने काम पर लग जाओ। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की कार्य निष्ठा से प्रसन्न थे। उन्होंने 2 महीने में उनसे 17 पुस्तकें की छपाई पूरी करने को कहा था। वे बजाय इसके उन्हें बताने की कोशिश करते कि यह कार्य क्यों असंभव था, उनके आदेश कितनी गंभीरता से ले रहे थे कि वे इससे इनकार या उनमें परिवर्तन या संशोधन की बात भी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये जो इम्पॉसिबल सा टास्क था, प्रैक्टिकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी सभी ने बहुत ही गहराई से लिया, सभी ने अपने आप को बदला और बहुत ही गंभीरता से लिया। वे इसे इनकार या उसमें परिवर्तन या संशोधन की बात सोच भी नहीं सकते थे कि प्रभुपाद के साथ बैठ करके थोड़ा मीटिंग कर लें, कुछ कर लें, थोड़ा अमेंडमेंट्स कर लें, नहीं, अब जो हो गया वैसा ही होगा। उनके आदेशों में परिवर्तन के स्थान पर उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया था। इंस्ट्रक्शन में परिवर्तन नहीं ला रहे कि प्रभुपाद थोड़ा चेंज हो जाओ, थोड़ा सा बढ़ा दो, कुछ महीने बढ़ा दो या कुछ टाइम दे दो, नहीं, उन्होंने किसको बदल लिया, अपने आप को ही बदल लिया, अपना सोने का टाइम, अपना उठने का टाइम, जो भी है अपने जीवन के जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उसी को सबको बदल लिया, लेकिन प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को नहीं बदला। ये होते हैं असली शिष्य, निष्ठावान शिष्य होते हैं, वो पूर्ण रूप से गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से बदलने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति शिष्य निष्ठावान नहीं होगा, तब तक गुरु की जो पूरी की पूरी कृपा जो है उन पे प्राप्त नहीं होगी। और गुरु जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी निर्देश देते हैं, उसमें शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसा नहीं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसमें शक्ति भी होती है। और जो इन निर्देशों का पालन करते हैं वो उसी शक्ति के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति निष्ठावान और होना चाहिए, उसके साथ साथ उनके निरीक्षण जो है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। जब ऐसा शिष्य करता है तभी जाकर उसमें इतने बदलाव आते हैं। अब देखिए, यही जो हिप्पीज हैं, यही जो फॉरेनर्स हैं, अमेरिका वासी हैं, क्या आपको लगता है कितना इतना काम करते होंगे? वो घंटों घंटों सोने वाले है ना, शराब मगरा इत्यादि में व्यस्त रहने वाले है ना, ये लोग इतनी सेवा कर पा रहे हैं, ये लोग इतना बदल गए है ना, कैसे ये सब सारा का सारा हो पा रहा है? प्रभुपाद जी की कृपा के कारण। प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस में इतनी शक्ति है कि जो भी इसको फॉलो करेगा निश्चित रूप से उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। उन्होंने अपने पूरा का पूरा अपना जीवन को ही, अपना जो जीवन का जो साइकिल था, जो डेली का दिनचर्या का जो शेड्यूल था, उसको ही उन्होंने बदल दिया। इसलिए देखते हैं इतने उन्नत भक्त बन पाए। थोड़ा भी डाउट करते, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं, यस नो है कि नहीं, इस तरह से करते तो क्या इस स्थिति को पहुंच पाते? नहीं। उन्होंने एज इट इज इसको लिया, जैसे प्रभुपाद ने एज इट इज संदेश दिया, प्रभुपाद के शिष्य ने भी एज इट इज अपने आप को बदला और फिर उसी में असली आनंद की अनुभूति हुई उनको। उनके आदेशों में परिवर्तन के स्थान पर उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया था। सामान्य कार्यक्षेत्र में, सामान्य कार्यक्षेत्र से आगे बढ़कर वे असामान्य प्रयास के क्षेत्र में पहुंच गए थे। परिणाम स्वरूप प्रभुपाद और वे दोनों बहुत संतोष का अनुभव कर रहे थे। दोनों में एक अद्भुत संतोष की अनुभूति हो रही थी, प्रभुपाद के शिष्य को भी हो रही थी और प्रभुपाद जी को भी हो रही थी। प्रभुपाद जी को क्यों हो रही थी? कि ये देखो कितने सारे लोग हैं मेरे फॉलोअर्स, मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया और ये देखो मेरे एक कहने पे, एक इशारे पे सब कैसे नाच रहे हैं। क्या ये देखकर उनको संतोष हो रहा था? हाँ, संतोष किस बात का हो रहा था? हाँ, इतनी लगन से कार्य कर अपने आप को बदल रहे हैं। और हाँ, प्रभुपाद जी के गुरु का भी यही इंस्ट्रक्शन है, तो वो देख पा रहे हैं कि उनके गुरु महाराज संतुष्ट हो रहे हैं। उनको कितनी खुशी मिल रही होगी कि उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला था कि विदेशों में जाकर प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, और वो यही कर रहे हैं। तो उनके गुरु महाराज को कितनी प्रसन्नता होती है, खास करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक पब्लिशन का काम ये कर रहे हैं, तो इस चीज से वो संतुष्ट हो रहे हैं। और अपने भक्तों में, अपने शिष्यों में इतना बदलाव, जी जान एक करके गुरु परंपरा की सेवा में, कृष्ण की सेवा में इस तरह से वो लगे, तो ये देखकर उनका संतोष का अनुभव हो रहा था। जैसा कि प्रभुपाद ने कहा, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो भगवान चैतन्य और सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के संतोष के लिए संभव बन गई थी। तो इसमें सभी संतुष्ट हो रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो इसी काम के लिए आए थे, संकीर्तन आंदोलन का उन्होंने प्रचार किया, किस लिए? कि ज्यादा से ज्यादा जो है सारे के सारे बद्ध जीवात्मा हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान के चरण कमलों तक वापस आए। तो महाप्रभु की यही इच्छा, भगवान श्री कृष्ण की भी यही इच्छा, जितने आचार्य उनकी भी यही इच्छा। अब बुक्स एक बार पब्लिश हो जाएंगे तो कितने लोगों का कल्याण होगा। चैतन्य चरितमृत जो है, अगर आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम में, भक्ति विनोद ठाकुर जी को 8 वर्ष लग गए चैतन्य चैतन्य ढूंढने में। 1860 से 1868 ये 8 वर्ष उनको लग गए ढूंढने के, मिल ही नहीं रहा था कहाँ है चैतन्य चैतन्य। कभी किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी मठ में जा रहे हैं, जबकि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, कोई आम व्यक्ति हो तो चलो समझ में भी आता, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश एम्पायर में, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा ओहदा होता है, और उसमें वो थे। उनको 8 वर्ष लग गए, मतलब कितना छुपा हुआ था। और अभी हम क्या देखते हैं, चैतन्य चैतन्य चाहिए कहां जाओ, बीबीटी सामने है, चैतन्य चैतन्य है, देखो सामने वो कह रहे हैं جس کو چاہیے آرام سے جاؤ لے آؤ، کوئی دقت ہی نہیں ہے. تو کتنا آسان بنا دیا، جو چیز کتنا مشکل میں اتنا اندر چھپا ہوا تھا اس کو پروپاد جی نے اجاگر کیا، پورے وشو بھر میں دیا. تو یہ دیکھ کر کے پروپاد جی کو سنتوشٹی ہو رہی کہ اب سے لوگوں کا کتنا کلیان ہوگا. پوروتی آچاریہ اس سے پرسن ہو رہے ہیں، شری چیتن مہاپرو پرسن ہو رہے ہیں، اور بھگوان شری کرشن تو پرسن ہو ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پرسنگ جو ہے یہیں پہ سماپت ہوتا ہے. جگت گرو شلو پربھوپاد کی اکاسی ورت مہا مہوتسو کی، انت کوٹی ویشنو وند کی، نتائے گور پرمانندے.